स्त्रिय तत् दुरापा कपट रुचिर हाथ भोज मध्य चरण रज उपास्य जस्य भूत वयंकर अपचक्रण पक्षे उत्तम श्लोक शब्द दिव्यमान दिव्य दिव्य इत्यादि कृष्ण प्रेषित शिरोमणि ये राधिका के मुख से मथुरा रमणियों को विषय बनाकर माने उनके लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसे कटाक्ष पूर्ण वचनों को और आक्षेप आदि को सुनकर उद्धव के मन में ऐसा भाव उठा जो सुन रहे थे चूचा ये मथुरा वासियों को भी अभियुक्त कर रही है और कृष्ण को भी कृष्ण में के संबंध में ऐसी उक्ति और प्रति उक्तियों को और कटाक्षों को सुन करके उद्धव के मन में ऐसा हुआ ये जो कह रही है श्रीमती राधिका जी ये आवेश में कह रहे जथार्थ में कृष्ण में कोई भी दोष नहीं है और न तो वहां की जादव पत्नियों के हृदय में तनिक भी कोई ऐसी बात है जो कृष्ण के प्रति वो ऐसा भाव रखती हैं और कृष्ण भी उनके प्रति ऐसा भाव रखते हैं क्योंकि श्री कृष्ण सब समय दिन रात स्मरण करते हैं और वे उनसे मिलने के लिए परम विफल हो जाते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हमें भेज जाते उन्हीं को प्रसन्न करने दिन रात इनके अतिरिक्त राधा के अतिरिक्त और किसी की चिंता नहीं उद्धव इज हियरिंग सरकास्टिक वर्ड्स ऑफ श्रीमती राधा एंड थिंकिंग दैट कृष्ण इज योर हर्ट देयर इज नथिंग टू डू विथ जादव वाइफ ऑफ द जादव दे आर हाई क्लास ऑफ पतिव्रता एंड कृष्ण ऑल्सो ही हैज नथिंग टू हिज does not love, he has no time and always he is immersed in thinking Radha. So why she is telling so? So it is not proper to tell about Krishna. इसलिए वो करें वो माकुर मई एवं वोचक स्वाम अनुस्मृत्य अनंग विक्रम स्थान प्रकार जो मया उपदेशते उपदेशवान पतंजलि से ये क्यों ऐसा कह रहे हैं ऐसा उनको नहीं करना कृष्ण तो उन्हीं के विरह में व्याकुल होकर के व्यथित हो रहे हैं उद्धव के मन में ऐसी भावना आने पर श्रीमती राधिका जी ने देखा कि भ्रमर हमारे पैरों के चारों तरफ में ही गुंजन कर रहा है अर्थात वो कह रहा है यदि मान्य जी ऐसा कह रहा है तो भाव करणों से सुन करके उसको उसका उत्तर देने लगी राधा जी कोई और क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर के कर लिए भ्रमर यदि कृष्ण हम लोगों के लिए आनंद पीड़ा में कातर होकर के ही मुझे प्रसन्न करने के लिए तुमको यदि यहाँ पर भेजा है तो मैं कहता हूँ ये ऐसा नहीं ये गलत तुम कह रहे हो मथुरापुरी में रमणियों का कोई भी अभाव नहीं है बड़ी बड़ी सुंदर रमणियाँ हैं और किसे यदि चाहे तो ऐसी कौन सी विश्व में దీని భూమి చ రసాయన్ దేవలోకమే రసాతల్ లోకమే నాగ కన్యాగణ నాగ పత్నిగణ और इन मथुरावासी रमणियों की तो बात ही क्या, ऐसी कौन सी नारी है जिसको कृष्ण इच्छा करें और पति पूज न करने, ऐसी कोई भी नहीं। अपने माधुर्य के द्वारा, अपने मधुर वचनों के द्वारा प्रेम प्रकट करके उनको ऐसी बात कहेंगे जो ऐसी कोई नहीं है जो पति पूजने है। देवताओं लक्ष्मी तत्व भी भूति भूति वयन का भूति माने लक्ष्मी विभूतियों की मालिक वो भी। और हम लोगों की तो बात क्या, हम तो कैसी गमार गोप कन्याएं हैं क्योंकि स्वर्ग में सृष्टि में और पाताल में जो सब रमणियां सुंदर से सुंदर हैं उनके बीच ऐसी कौन सी रमणी है जो कृष्ण के लिए दुष्ट प्राप्त हैं। स्वर्ग में देवियां, पाताल में नाग कन्या और उनकी पत्नियां, वे अपने सभी पत्नियों को छोड़ करके, लक्ष्मी भी अपने पति नारायण को त्याग करके कृष्ण से मिलन की आकांक्षा रखती। नाग पत्नियों के विषय में सुनाई है अपने पति को छोड़ करके कृष्ण की आराधना करती थी नाग पत्नियां, बीज क्या यज्ञ पत्नियां और नाग कन्या वो भक्ति के द्वारा उनको वशीभूत कर दिया। तो कृष्ण के इच्छा के प्रति भूत होकर के उनके निकट आगमन करके सेवा नहीं कर सकती ऐसी कौन है। इसलिए मथुरावासी रमणियों की तो बात ही क्या, उनके लिए कृष्ण को कुछ पन नहीं देना पड़ता। पन माने क्या, जैसा विवाह करते हैं तो पत्नी के लिए देना पड़ता है ना, कुछ ऐसे ही हो जाता है दहेज या कुछ भी, कृष्ण को कुछ नहीं देना पड़ता। यदि कोई पति विवाह करने जाए तो पत्नी के लिए गहना रुपया इत्यादि कपड़े सुंदर ये सब ले जाएगा ना, और पति क्या करना पड़ता है जैसे हम इसकी रक्षा करिए। कृष्ण के लिए ये पन करने के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कृष्ण का मधुर कपट युक्त हाथ है, भीतर में एक बाहर में एक अंक, ऊपर से जो हंसना मुस्कुराना है ये भी कपट कपट कृष्ण का है। अत्यंत सुंदर बदन कमल और तेरी विभिन्नों का चलाना ये कटाक्ष देकर के कौन सी ऐसी रमणी है जो उनके प्रति आसक्त और प्रतिकूल नहीं हो जाए। हम भी तो हम इससे परिचित हैं, हम भी बड़े सरल बुद्धि की थी और इस प्रकार से उनका मुख पुराना प्रणय की भीख मांगना ये सब देखकर जो उनकी वशीभूत हो गई। अब मैं हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग मतलब भाग्य हैं दुर्भाग्यनी, हम हमारे माथा को तो उन्होंने ही खाया इसी तरह से। माथा खाना मैंने क्या, हमारा सर्वनाश एक कुल 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 लोग अपर लोग दोनों ही हमारे पथ भ्रष्ट कर दिया। परम सुंदर मुख कमल, यहां तक लंबी लंबी आंखें, दीर्घ आंखें, हृदय मनोकर्षि हास्य और उनका त्रिलोक मनोहारी मधुर पंक्ति ध्वनि मधुर वाक्याला नवीन किशोर मूर्ति नटवर वेश, इसी को तो देख करके हम लोग भी इनके हाथों में बिक गई, बिना मोल के बिक गई। और हम लोगों ने क्या किया इस पर, अपने को मैं बिक गई हम लोग और सब कुछ बोल करके माता पिता गुरुजन लोग अलज्जा गुरुजनों का भय सब कुछ छोड़ करके हम उनकी हो गए। ओ अब हम उनकी कपटता फल पूर्ण भीतर में एक बाहर में एक अब हम समझी हैं। उनका नये भोग लाख युक्त नये कटाक्ष और बदन कमल को देकर के श्री जगत की सभी रमणियां उनके अंदर उन्नति स्वीकार करेंगी, ऐसी कोई योजना नहीं करेंगी। और उनके बच्ची खुश होकर के उनकी भजना नहीं करेगी, ऐसा किसी को हम लोग नहीं देखते हैं। बल्कि देविया तो दूर रहे, नारायण के पक्ष में विलास करने वाली पतिपता श्रोमणी स्वयं लक्ष्मी देवी को भी ये कृष्ण का माधुर्य उसे खैं चलाती है। तो और की तो बात क्या है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, ब्रह्मांड आदि पर व्योम कहां के स्वरूपगण सात बार बोले हरे मौन, जबरदस्ती खैं चलाते हैं। पतिव्रता शिरोमणि जारे कहे वेद वाणी आकर्षण से ही लक्ष्मी, वेदों में भी जिनकी प्रशंसा करी की गई है ऐसे लक्ष्मियों को भी पतिव्रता शिरोमणि अरुंधति इत्यादि की भी आराध्या देवी लक्ष्मी देवी जी को भी वो और बेलबन में आज भी तपस्या कर रही हैं, किंतु उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। साथे लक्ष्मी एक से ही रमा नारायण प्रियतमा पतिव्रता गणेश उपास्या सिंहों के माधुर्य लाभे साड़ी सब काम हो गए व्रत करी करी जा उन्होंने प्रता चरण, किंतु अभी तक भी अध्यापि पाया है कि नहीं पाया है इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिख अलका व्रतम मुखम तबकुंडल स्त्री गंडास्थल धर्म शुभम हटितावलोकम दत्ता भयं च दंड युगम विलोक्य भक्त श्रेयी चरमणं च भवानुदास्य। का श्रीय थे पलग कल्पदायक वेणु भीतर सम्मोहिता चैता चले नत्रैलोक्यम त्रैलोक सौभगम सिदं च निरुक्त रूपम जदगोतुम ध्रुम का श्लोकान्ना। गोपियां भी ऐसे कह रही हैं का स्त्रीय, हम स्त्रियों की तो बात क्या, विशेष कर बच्ची स्त्रियों की बात क्या, तुम्हारे कुंडल वैसे सुशोभित गंडस्थल अधर सुधा हास्ययुग दृष्टि हल्का वृत्त बदन कमल अभय बाहु जुगल लक्ष्मी जी के एकमात्र रति जनक बस्तस्थल को दर्शन करके और तुम्हारा बंसी बादन ये सब देकर के ऐसी कौन सी स्त्री है जो मुग्ध न हो जाए। यहाँ तक कि पक्षी भी अपना धर्म छोड़ देते हैं, मृग भी अपना धर्म छोड़ देते हैं, सभी लोग उनको देख करके, नदी भी बहती है वो जम जाती चलती नहीं है, सभी अपना अपना धर्म छोड़ देते हैं। हम लोगों ने धर्म छोड़ा तो ये क्या छोड़ा, इसलिए तुम्हारे इस रूप वेणु की माधुर्य से गाभी गो धूम दीजा जिसका दो बार जन्म हुआ, पक्षी मृग गाभी यमुना नदी सब अपने धर्मों को तिलांजलि दे, चर अचर हो जाता है और अचर चल, वृक्ष भी झुक जाते हैं पुष्प पल्लवों से होकर के फल को लेकर के कृष्ण के चरणों में जाएंगे, ये अचल है। पर्वत द्रवित हो जाते हैं, मोर इत्यादि पक्षीगण बोलना एकदम भूल जाते हैं। इस तरह से कृष्ण जी की पद्मचान पाती आते मुखपांते चंद के साथ में और भी सकते, इसलिए हे भ्रमण ऐसी कोई भी नहीं है रमणी जो कृष्ण के ऊपर में मुग्ध ना हो जाए, अपने को बीच न दे। अब तो तुम समझ रहे हो वो कृष्ण का रूप माधुर्य और उनका कैसा भरा और तो मैंने वंचना मूल वंचना करने वाले कृष्ण ऐसे मुख में भीतर में एक और बाहर में भी कैसे, जैसे कनक के घट में बीज भरा पड़ा हो और ऊपर से दूध ऊपर से ऊपर में तैर रहा, अब भीतर में क्या है और खड़ा किसका है। बड़ा ही सुंदर कृष्ण का ये, और भीतर में भी कपट था और बाहर में क्या है देखने में बड़ा सुकुमर सत्य। तो कहते हैं कि ऐसे कृष्ण का माधुर्य ही ऐसा है जो सब लोगों को खेच लाता है, बर्बस आकर्षण कर ले ऐसा असमोध असम उद्ध जिसके समान और कोई नहीं है। माधुर्य की खानी मधुर्य की खनी खनी में खान और श्यामल मूर्ति कृष्ण की जो दर्शन करता है सभी लोग मुग्ध हो जाते हैं। सिर पर एक कौन डुबाए सब त्रिभुवन, सारे त्रिभुवन को डुबा देता है, सब प्राणी पर आकर्षण है, समस्त प्राणियों का आकर्षण कर देता है। ऐसा कि कृष्ण को भी अपने सौंदर्य को देकर के लोभ हो जाता है उस सौंदर्य माधुर्य को देखने के लिए। रूप खानी देखी अपना कृष्ण है चमत्कार, आस्वादित मन उसे काम, इसलिए चैतन्य महापुरुष के रूप में आए हैं। अरे मूर्ख मधुकर, और तुमको कितनी बात बतलाऊं, घबराने दो वो सब इतना नहीं, तुम तो समझेगा नहीं, तुम्हारे प्रभु का मैं एक नाम है उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक अपि च कृपण पक्षे उत्तम श्लोक शब्द चरण उपास्य जस्य भूतिर वयंका अपि च कृपण पक्षे उत्तम श्लोक, तुम्हारे प्रभु का कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक किसको कहते हैं? उत्तम श्लोक कहते हैं जो लोग दिनों पर दया करते, सबसे जिसको हो जिसे पढ़ा है उसके ऊपर में जो दया करते उनको कहते हैं उत्तम श्लोक। जिनके अंदर में दया भरी पड़ी है किंतु हमारे क्षेत्र में यह नाम व्यर्थ है, दया नाम की चीज उनके हृदय में नहीं छूटता है, ऊपर से दया का भाव तो जरूर है। मैं हम अब देखती हैं क्या उनके समान दुख देने वाला निष्ठुर कपटी भ्रष्ट लंपट चोर कोई भी नहीं है। उनका कार्य और उनकी बात की सभी कपटता में, उनका बाहर भी तो सब कुछ कपट है, ऐसा कौन कर सकता है कृष्ण को? विश्व में तो ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कृष्ण को कर सके। किनको? तो समस्त भगवत्ता की चरम सार है, भगवत्ता की चरम सीमा है, ऐश्वर्य और माधुर्य के खान है मैंने वो भी उसकी अंतिम सीमा तक है। ऐसे कृष्ण जिनके एक कटाक्ष पास से ही कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांडों का लय हो जाता है, सृष्टि हो जाती है, ऐश्वरों ईश्वरों के भी ईश्वर से परमेश्वर है, और इस कृष्ण को ऐसी उलाहना कटाक्ष गाली गलौज दे रहे यशोदा मैया भी नहीं कर सकती, नंद बाबा करेंगे, सखा लोग भी नहीं कर सकते, कौन करेगा? ब्रह्मा जी तो स्तुति करेंगे वेद के समूह, और कृष्ण इन गालियों को सुनने के लिए भ्रमर बन करके उनके समीप में आए हुए हैं। ऐसे ये गोपियां हैं, उनका दिन बंधु नाम भी कपट का हो। हम लोगों जैसा दिन कौन होगा जो घर बार छोड़ करके बेघर होकर के बन में जोड़ रही हैं, घर भी नहीं जा सकते, जिसको हमारे पतियों ने घर वालों ने सबने ठुकरा दिया इन्हीं के कारण, और दुखी हैं हमारे मैत्री ऐसे दिनयन आज उनके निकट उपेक्षित है, अवज्ञात है, अवज्ञात किए हुए हैं, ये चक्रवर्ती ठाकुर जी के विचार है। किंतु किंच उत्तम श्लोक शब्द, उत्तम श्लोक शब्द किसको कहते हैं? कृपण पक्षे एवं संतप्त दीनहीन जनान जो दयते, उसको कहते हैं उत्तम श्लोक, सही उत्तम श्लोक उसके जो दीनहीन संतप्त दुखी जीवों के ऊपर में दयते दया करते हैं वो है श्लोक। कृष्ण तू सलक्षण अभावा, कृष्ण में ये सब लक्षण नहीं देखते, गोपिया का नियम तो देख रही हैं, मिथ्या एवं उत्तम श्लोक था इसके अर्थ मिथ्या ही इनको उत्तम श्लोक। इसी श्लोक में देवभूल कृष्ण को कटाक्ष कर रही है, और देवभूल चर इत्यादि वाक्यों से स्वर्ग मत्स रसातल इत्यादि में जिनकी माया कुहूक के द्वारा वर्षित को तौर करके वहां की नगरिया कृष्ण के प्रति बची है, ये उपकता का लक्षण है। अत्र पूर्वाखे दीप भूई इत्यादि न कुहकता आख्यान, कुहकता चरण रूपा से इस श्लोक में तृतीय चरण में के वाक्य से लक्ष्मी सब भी उनकी पाद सेवा करती है तो और लोगों की तो बात क्या है। इसके द्वारा श्रीमती राधिका जी का गर्व पूर्ण इससे प्रकटित है चरण रज उपास से इसमें ईर्ष्या है। अपिशत्रुपण पक्ष इस कथा के द्वारा तथा वयं का और हम लोगों की तो बात क्या इस वाक्य के द्वारा असूयापूर्ण आपके असूयापूर्ण माने जो जिसमें नहीं है उसमें उसकी आरोप करके गुणों में दोषों का आरोप करना असूया कहलाता है। गुणों में दोषों का आरोप करना कृष्ण में ये सब गुण है और दोषों गुणों को भी दोष बतला रहे हैं इसलिए श्लोक को चित्र जल में उज्जवल इसको कहा गया है। इस तरह से श्रीमती राधिका जी अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। आई थिंक दैट दे विल एक्सप्लेन आफ्टर माई क्लास बट यू शुड नोट दैट श्रीमती राधिका जी और गिविंग सो मच बैड नेम टू कृष्ण and who is Krishna, Supreme Personality of Godhead. He is Sarva Ishwar, Ishwar, Sarveshwar. And even Srimati Radhika is abusing him so much. Mata Yashoda, Ananda Baba, any Sakha, he cannot abuse Krishna like this. And Krishna has come here in a form of bumblebee here to hear all these things and very happy to hear all these things. So they will explain in the back. One thing, ऐसी जो भक्ति है ये तो है उत्तमा भक्ति। अभी तो राधिका जी में और कृष्ण के परिकरों में हम लोग दिखला रहे हैं इस चीज को। इसी उत्तम भक्ति का यदि कोई साधन करता है अपने प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा तब उसको साधन करते साधन भक्ति। उसका उदाहरण कौन है? जो भक्ति का लक्षण यह है कि अपने जितनी भी इंद्रियां हैं, मन है, वाक्य है, यहां तक कि भाव जितने प्रकार के हैं उसमें अन्वय और व्यतिरिक्त रूप से चेष्टा, अनुकूल रूप से चेष्टा, इन सब की और व्यतिरिक्त से भक्ति के विरोधी कार्यों को न करना, ये दोनों हैं। अनुकूल लेना नैरंतर्यमयी गुरु वचनों के अनुगत्य में, प्रतिकूल भावना रही, अन्याभिलाषिता शून्य, कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त हरि गुरु वैष्णव तीनों के की सेवा के अतिरिक्त और कोई वासना हृदय में न रहे और ज्ञान और कर्म के द्वारा अच्छा भी भक्ति न हो, ऐसा का उदाहरण है कि अपनी इंद्रियों के द्वारा ऐसी जो सेवा कर रहा है, ऐसा कोई हमारे भागवत में ऐसा कोई किसी का वर्णन या कहीं का वर्णन है या नहीं? कौन है बोलो, इनके संबंध में कैसे रहेगी, इनको कैसे कहा जाएगा और ये कौन कोटि के भक्त हैं अम्बरीश महाराज और किस प्रकार से ऐसा उन्होंने किया जो ये सारे लक्षण में मिल रहे हैं। मतलब अम्बरीश महाराज अच्छी तरह से समझो ये उत्तम भक्ति है किंतु अपने प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के द्वारा अपना विलास शून्य हो करके कैसे अम्बरीश जी कर रहे हैं इसको समझ करके ऐसा ही भजन करो यदि मंगल चाहते हो। एक ही मानसू सर्व कृष्ण हरि गुरु वैष्णव देन ट्राई टू बी लाइक अम्बरीश महाराज हाउ ही बट engaged with all senses, even mind, tongue, all senses, even his mood, he engaged in the service of Hari, Guru and Vaishnava. We should try to follow him alone. Main to bhakti bhai nahi hogi. So,
अभी अभी
ये सब उदाहरण कौन पर घटित करो
अभी अभी
आप लोग भी समझ करके ऐसा करने की चेष्टा करें यू शुड बी हियर एंड यू शुड नॉट हाउ टू फॉलो हिम
अभी अभी है कि साधन भक्त जब गुरु वैष्णवों के अनुग्रह में रह सेवा करता है तब उसको भक्ति नहीं रहेगी जब वो भक्ति अपने सुख के लिए ना होगा भगवत प्रति यहाँ के उद्देश्य गुरु वैष्णव के प्रति यहाँ के उद्देश्य से हो तब वो सुख भक्ति हो जहाँ पर अपने सुख की कामना रह जाती है अपने सुख की अभिलाषा इसलिए यहाँ पर कहा है कि अंधाधिकार शिकार सुनना ज्ञान गर्वा जना सुनना कि जहाँ पर अंध अभिलाषा दूसरी अभिलाषा रह जाती है अपने सुन के लिए यद्यों की पारणों की जहाँ पर अपने सुन की अभिलाषा हुई वहां पर तो सकाम हो गया निष्काम भक्ति नहीं इसलिए साधन बहुत प्रकार के देखने को मिलते हैं जब बहुत से लोग सेवा भी करते हैं परंतु जब निष्काम निष्पार्थ रूप से गुरु वैष्णवों के अनुग्रह से नहीं रहेगा भगवत को मेरे धाम के उद्देश्य से मौत का उसको भक्ति मानी जाएगी नहीं तो सब कुछ किया जा रहा है अपने स्वरूप के लिए वो हम पर भक्ति नहीं है अमरीश महाराज ने अपने सारी भावनाओं के सारे सभी इंद्रियों को भगवत की सेवा में ले और उनके प्रति विधान के लिए तब उनके अंदर में भाव उत्पन्न हुआ कि उन सब इंद्रियों को जवाब तैयार रखी अन्यथा बहुत से लोग क्या करते हैं कुछ दिन तक सेवा करते करते हरि का पाना जरूरी नहीं है व्रत नहीं होता है और भजन साधन को पकड़ नहीं पाते हैं कुछ दिनों तक करते हुए फिर निराश होकर के लौट जाते हैं क्यों अपने दुख की अभिलाषा पूर्ण मात्रा में एक साधक भक्त तभी पूर्ण रूप से साधक होगा जबकि अपनी सारी कामनाओं को चयन कर संपूर्ण रूप से उनके प्रति विधान के रूप से सत्य जब भजन कर रहे हैं उनकी सेवा उनके प्रति विधान के रूप से सत्य न कि अपने उद्देश्य इस प्रकार साधन भक्त की बात है और साधन भक्ति में बहुत प्रकार के स्थिति और बहुत प्रकार के
संबंध ऐसे भक्तों को अपने गुरु में कोई दोष दिखता है कि नहीं
ऐसे भक्त लोग गुरु में कोई दोष नहीं दिखते हैं कदाचित कदाचित किसी सिद्धांत पर किसी विषयों पर जब विवाद खराब हो जाए
हाँ तो फिर उससे विवाद कर लेता है
तो क्या हुआ ये क्या हुआ ये अंगा विदार हुआ न ज्ञान कर्म अच्छा हुआ न अनुकूल जब उसके चित्त भक्ति ये क्या हुई
नहीं
कोई विवाद विवाद ही होता है जहाँ पर कोई बात आ जाए तो उस बात को देखे जाएंगे कि हाँ जगह तो सही है या
उनके समझ में नहीं
वहाँ पर विचार विचार नहीं है गुरु आज्ञा घर को जानी है हमेशा काम को तो करके चलने की बात नहीं है वहाँ पर विचार करके देते हैं कोई आदर में कोई बात करके भारत में जो कहा गया है गुरु आज्ञा ही गुरु विचार ये सब लोग उठा हो गया कि नहीं ऐसा नहीं है वहाँ पर विचार करके हर चीज को विचार करके देखना पड़ेगा ऐसा कोई विचार नहीं तुम्हारेगा तो वो कोई विचार नहीं तुम्हारे कहने का कोई काम शास्त्र है हमने गुरु महाराज जी से भी पूछ लिया कि मैंने कहा कि गुरु महाराज जी है बताइए गुरु महाराज जी ने बताया कि अपना विचार करके देखो कोई सेवक यदि विचार करके नहीं देखते तो उल्टा सीधा करके आएंगे कि हाँ गुरु जी ने बता दिया हर बात तो गुरु जी का नाम पर आरम्भ कर देंगे तो ऐसा नहीं होता है
तुम्हारा विचार ठीक नहीं
कि गुरु जी ने कह दिया उस बात पर तो विचार करके देखा
नहीं
मैं खुद के खुद करके मैं जाता हूँ उनको नहीं लगा है कि यही भक्ति है
ये गुरु आनंद से ही नहीं हुआ नहीं है
आगे
बढ़ो अम्बरीश महाराज सब अपने गुरु वर्गों की बात मान करके चलते हैं इसलिए रति हुई आगे बढ़ो के विचारों में जब बातों को जब विचार करके सही करके लेगा तब कोई गड़बड़ी नहीं है पहले ही समझ में जैसे वो ठीक नहीं है तब फिर विचार करो तब तक गड़बड़ हो गया उसको सही मान करके फिर सोचो कि कैसे सही है ये बात ठीक
है
ये तो समझो पहले उसको सही मान लो और मान करके कैसे सही है ये तो विचार लोग ऊपर जैसे ना लोग हो गया अब उसको कैसे मिलेगा इसको विचार करो और जो लोग भैया इसमें किसी का कारण नहीं है कोई विचार नहीं कृष्ण का ये रूप माधुर के लीला आगे बढ़ो
सुधार
विचार है चलिए सुधार करो बैठो सुधार और दूसरे उसके बाद में अमरीश महाराज जी कैसी भक्ति इसके समझ में
बोले
लोग याद है गुरु वैष्णवों को के विचार ठीक है ये पहले मान लो गुरु जी हमारे ध्यान से नहीं है शंकर जैसा मत मानो उनको सही मान करके यदि सदगुरु पदार्थ के उसी समय में विचार करो और यदि सदगुरु हैं तो उनके विचार सही है कैसे सही है अब इसको विचार कर सकते हैं शंकर जी ने शंकर आचार्य शंकर हैं
उन्होंने
कहा कि हमारे गुरु मूर्ख हैं
व्यवधान तो लिखाई लो भी बात
उन्होंने इस विषय का सामंजस्य सभी हमारे गुरु तो हमारे गुरु जी और हमारी गुरु परंपरा कहती है चैतन्य चमन कहते हैं जैसे वो गुरु उनका मानना बेकार है
अपने समस्त इंद्रियों को भगवान के सेवा में विनियुक्त किया था अपने आप में ही गुरु वैष्णव के अनुरक्षा में कभी कोई विचार कसरत हो कैसे ये करना है समझ कैसे करना है तो वो क्या करते थे ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण है जो वैष्णव ब्राह्मण उनको बुलाते थे जैसे हम देखते हैं दुर्वाकर के संबंध यदि से हम आलोचना कर रहे हैं तो अमृत महाराज जी सबरी महाराज कृष्ण पदार गये अपने मन को भगवान के चरण में अर्पण किया और हाथ के द्वारा करो भरे के मंदिर के नाम और ये तो राजशासन मंत्री के माध्यम से करते थे और स्वयं भगवान जी के लिए सेवा कार है तो अपने स्वयं करते थे नौकर के द्वारा भगवान का सेवा नहीं कर लाया हाथ के द्वारा मंदिर माध्यम मंदिर में घर लगाना पहुंचना ये सब स्वयं करते थे ऐसे द्वारा भगवत धाम परिक्रमा करना और इसके द्वारा उनके चरण में नत होना ध्यान से प्रयोग और नासिका इंद्र के द्वारा भगवान के चरण में जो तीन पुष्प चंदन एवं तुलसी इसके नवरंग का अभ्यास करते थे आंखों के द्वारा भगवान के श्रीमूर्ति यानी श्री निर्माण दर्शन करते थे ऐसे करके अपने समस्त इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाया जब कोई विचार ऐसे आया कि सामान्य पर नहीं किया जा रहा है कैसे किया जाए तो वो प्रश्न होने सहायता लेते थे इससे प्रतीत होता है कि अनुरोध कर ही जाते थे एक वर्ष वापस ही आए
नहीं वो नहीं
इसी पर विचार करो। अभी श्लोक का पूरा अर्थ नहीं है, बैठो। उत्तम श्लोक जना जना श्रेया रसी, क्या तात्पर्य? तो श्लोक है, अच्छा दूसरे दिन कल हम इसके संबंध में बदलाएं, अभी संक्षेप में बदला रहे हैं। उत्तम श्लोक कृष्ण है ना, उत्तम श्लोक जन कृष्ण के जो जन है, कृष्ण के जन कौन है? भागवत लोग, वैष्णव लोग, जो सर्वस्व कृष्ण के लिए अपना अर्पित कर दिया है वो लोग हैं। इसमें प्रधान गुरु हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का भाव बतला रहा हूँ, पढ़ करके देखना, आज पढ़ रहा था बहुत अच्छा लगा। तो उत्तम श्लोक जना श्रयारति, उनके प्रति रति अर्थात कृष्ण के प्रति, उनके जो निर्मत्तर और जो उनके प्रति महाभागवत इत्यादि हैं, उनके प्रति और गुरु के प्रति, तीनों के प्रति रति, जैसे रूप गोस्वामी ने कहा ठीक वैसे थे। इसीलिए इस श्लोक के मत कृष्ण क्या श्लोक बोला, समय, इसके पहले उनको महाभागवत बतलाया, महाभागवत शब्द ही उनके लिए। महाभागवत कौन, भागवत कौन है? भागवत से भी बढ़कर के महाभागवत। और उनको बतलाया है रति, रति माने भाव, वो भाव भक्ति में लगे हुए थे, भाव भक्ति। अम्बरीश महाराज ये साधारण भक्ति के नहीं थे, उन्होंने लगाया तो इन सबको, किंतु उसमें लिखा है महाभागवत और जनाश्रया रति, जति इन धाम के प्रति रति थी, इसलिए उनकी राजधानी कहीं और थी, यहाँ पर जल शून्य कौन सा देश था, मध्य प्रदेश जो उज्जैनी इत्यादि कहलाता है, और वहां पर एकादशी का व्रत भी करते थे जीवन भर, किंतु मथुरा धाम कृष्ण का ये धाम वृंदावन मधुबन ब्रज के अंतर्गत मधुबन में आकर के एक वर्ष तक कृष्ण की भक्ति के लिए ये व्रत किया। पठो एकादशी को व्रत करने में उसके शाम को उपवास, एकादशी दिन निर्जला और तीसरे दिन एक बार हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर और तब फिर कुछ ग्रहण करते। उन्होंने जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त, जो विभूति प्राप्त ब्रह्म ऋषि हैं, जो कुछ कर देंगे वो हो जाएगा, ये सबको प्राप्त, ऐसे ब्राह्मण के साथ को भी के लिए नहीं, बल्कि भगवान ने उनकी सप्तम रखे, उनको कोई ज्ञान नहीं है इस विषय में, कभी भी अपने लिए कभी भी चक्र सुदर्शन से या भगवान से नहीं प्रार्थना की कि हमें बचाओ, ऐसे ये रति उनको थी। इसलिए राज्य का संचालन कौन करता था, मंत्री परिषद के द्वारा, और यज्ञ इत्यादि कहाँ कराते थे, वो अपने देश में वशिष्ठ गौतम और इन लोगों के द्वारा, और उसमें यज्ञ में दान करते थे, अपने नहीं जाते थे, अपने किस में रहते थे भगवत भक्ति, अपने हाथ से कलशों से स्नान करके उसमें कलश से पानी यमुना का लाना, ठाकुर जी का स्नान, मंदिर धोना, जितना काम प्रतिनिधि के द्वारा नहीं, प्रतिनिधि के द्वारा राज्य संचालन और यज्ञ, और स्वयं क्या करते थे 24 घंटा अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा हरि गुरु और वैष्णव की के चरण में रति रखने वाले। इस तरह से श्रीमद्भागवत ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, एक तरफ उनका धर्म संकट आया, धर्म संकट में क्या, एक तरफ में ऐसे ब्रह्मवादी विभूति युग जो कुछ कहते हो जाए ऐसा ब्राह्मण, और भी ब्राह्मणी केवल नहीं ब्रह्मर्षि दुर्वा का साधारण आदमी है और उनको बुलाया निमंत्रण दिया कि आपको आज प्रसाद पाना है। केवल 12 मिनट का समय रह गया था, आग घड़ी आके रह गया और दुर्वासा जी गए स्नान करने और वो ब्रह्म ज्ञान में जानबूझकर विलंब नहीं किया, वो अपने ब्रह्म चिंता में ऐसे निमग्न हो गए, गोते लगा करके भूल गए। और जब उनका समाधि भंग हुई स्नान करके जब तक लौटे तब तक इन्होंने ब्राह्मणों से पूछा जी क्या करना चाहिए, देखो हमने उनको निमंत्रण दिया है वो आएंगे नहीं, इधर यदि पारण नहीं करते हैं तो हमारी भक्ति के लिए ये बाधा है, भक्ति नष्ट हो जाएगी। इधर ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मण ब्रह्मण्य कृष्ण ब्रह्मण्य है, ऐसे धर्म संकट में मुझे क्या करना चाहिए बतलाओ। बड़े बड़े विद्वान थे ब्राह्मण, कोई कुछ सोच करके उनको बतला नहीं दे सके। तब उन्होंने अपने आप कहा कि देखो पानी पीना भोजन करना और नहीं करना भी है, तो मैं समझता हूँ आप लोग यदि आदेश दें तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, चरणामृत हो या जाता उसमें लिखा नहीं है चरणाम पानी टीका में लिखा होगा। तो उन्होंने ऐसा कह करके उनसे अनुमति दी, अनुमति लेकर उन्हें कहा ये बहुत अच्छा विचार है, इसे पारण करना भी होगा और नहीं करना भी होगा और ब्राह्मण का सम्मान भी हो जाएगा क्योंकि भगवान ब्राह्मण देव हैं, उनका सम्मान और भक्ति की रक्षा भी हो जाएगी, इसलिए यही करना होगा। अच्छा पहले श्लोक में जो बतलाया गया अपने इंद्रियों को नियुक्त किया था इसका मतलब क्या, जिस प्रकार से आदमी प्रजाओं पर शासन करके कंट्रोल करता है और उसको नियुक्त करता है ये काम पर, उसी प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके नियुक्त किया था। ऐसे नहीं कि क्रोध इत्यादि और जितनी बातें हैं उनके द्वारा ये कंट्रोल्ड थे, ऐसा नहीं, कौन कंट्रोल कर रहा था क्रोध को और इन सबको कंट्रोल करके और अपने मन को सारी इंद्रियों को जो भगवत विनती होती है हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे और कंट्रोल कर दिया इसलिए समझो कि वह महाभाग थे और उनको अपने अपने विषयों में नियुक्त करके जैसा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, जैसे कि अपने मंत्री वर्ग को और सबको आदेश दे रखा है और नहीं पालन करेंगे तो उनको शासन करके दंड देंगे, इसी प्रकार उनमें सामर्थ्य इसलिए ये महाभाग और उनके प्रति रति थी भी समझो, तो इसलिए उन्होंने जो विचार किया। और एक बात और भगवान ने देखा, इसको अपने देह की सुध बुद्धि नहीं है, संपूर्ण रूप से हमको आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए भगवान ने अपने आयु चक्र सुदर्शन को आदेश दे रखा था, ये अपने शरीर के लिए कुछ नहीं देखा था, तुम सर्वदा इसकी रक्षा करना, तुम इसकी रक्षा करना, इसलिए उनका चक्र सुदर्शन भगवान की आदेश से सब समय अलक्षित रूप में रह करके उनकी रक्षा करता था, इसलिए ये परम निर्भीक थे। जब उनका कृत्य दुर्वासा का मंत्र का उसका विकराल रूप धारण करके उनको जलाने के लिए जब आया हाथों में तलवार लेकर, ये चुपचाप खड़े रहे, क्यों क्यों रहे, मरना है आ रही है मरने से बाबा, जब बचे ही नहीं सकते हैं तो क्या जरूरत है, वो प्रभु देखेंगे, आत्मसमर्पण किए इसलिए भक्त लोग प्रहलाद महाराज जैसा, बल्कि उसमें जनाशय रथ में प्रहलाद महाराज का नाम दिया है विष्णु ने चक्रवर्ता भजन, ऐसे लोगों का अनुशीलन करके उनके अनुगत्य में भजन करते थे ये भी दिया है। तो ऐसे ये खड़े रहे और ये ब्रह्मर्षि जो कहते हैं वो सत्य होता है और वो यहाँ चक्रसुदर्शन पीछा किया, वो देख रहे हैं ऋषि हमारे पीठ पर ही एकदम लगा हुआ है और मारा, सिर्फ मारता क्यों नहीं है, यदि चाहता तो खत्म कर देता कि नहीं, तो क्यों नहीं कर रहा? अम्बरीश महाराज के वजह से नहीं कर रहा। यदि कर देंगे तो ये बड़े दुखी हो जाएंगे, तथा अमंगल हो जाएगा। इसलिए सब शुक्र दर्शन उनकी इच्छा जानते हैं, प्रभु की इच्छा भी जानते हैं, और भी बहुत सी बातें हैं। इसलिए मारा नहीं, अनुभव कराया। अब ब्रह्मण्य देव है ना, इसलिए उनको नहीं मारा। इस तरह से उन्होंने विचार किया। ब्रह्मज्ञता के भी ठीक है, उसको सम्मान करते हैं, इसलिए पानी पी करके उन्होंने किया, किंतु भक्ति का निराकरण नहीं, इसलिए पालन जरूर किया। इसलिए धर्म संकट से ये बचे। धर्म संकट को ब्राह्मणों ने हल नहीं किया इन्होंने, विशेष इस पर हम कल उसके श्लोकों पर एक एक विचारों से लेकर के आप लोगों को अवगत करेंगे, कैसे भक्ति में हम लोग भी उन्हीं की तरफ में लग गए। गौ प्रमाण करो।